हम लोग आज पढ़ेंगे भगवद गीता से अध्याय दो श्लोक क्रमांक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थ बहुत स्पष्ट है, एषा ते विहिता सांख्ये, ते अर्थात आपके लिए मैंने सांख्य योग का वर्णन किया अभी तक, अब आप मुझसे बुद्धिर योग के बारे में सुनिएगा। और इस बुद्धि से युक्त होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म बंधन को प्रहास्यसी अर्थात नष्ट कर देता है। स्पष्ट अर्थ है। इस संबंध में कल हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को भी देखेंगे और आप लोगों को बुद्धि लगाकर दोनों टीकाओं का सामंजस्य स्वीकार करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अलग बोलेंगे वो, उसको हम रहस्य उद्घाटन कल करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि बुद्धि योग भक्ति योग भी होता है और निष्काम कर्म योग भी होता है, दोनों ही होता है। प्रभुपाद जी उसको मिला करके अपने टीका में चर्चा करेंगे 2.40 में। तो खैर यहां पे बलदेव विद्याभूषण जी इसको निष्काम कर्म योग ले रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको भक्ति योग लेंगे। तो इसलिए अब हम लोग वो दोनों ही लेंगे, लेकिन उसको वो प्राथमिकता भक्ति को देंगे, भक्ति योग को, स्वरूप सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति को। तो अभी हम लोग इस श्लोक की चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट अनुवाद। यहां मैंने भगवान ने वैश्लेषिक अध्ययन, वैश्लेषिक का अर्थ समझते हैं एनालिसिस के द्वारा, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, इस प्रकार से भगवान ने विश्लेषण करके समझाया था सांख्य द्वारा, इस ज्ञान का वर्णन किया अर्थात आत्मज्ञान का। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अब इससे पहले कि हम लोग आगे जाएंगे, मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमने कल आपको समझाया था कि आत्मज्ञान देने के बाद निष्काम कर्म करने की आवश्यकता क्यों है, या निष्काम कर्म योग के बारे में बताने की क्या आवश्यकता है। आत्मज्ञान तो दे दिया, तो निष्काम कर्म योग के बारे में क्यों बता रहे हैं भगवान?
क्योंकि जब निष्काम भाव से भक्ति करेगा तो अपने आप उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा।
ये बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट इसमें आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, एक और पॉइंट है जो आपको बताना पड़ेगा। यस बोलिए, मैं तो पास में। क्यों बता रहे हैं ये समझना चाहिए ना, भगवान क्यों बोल रहे हैं? आत्मज्ञान तो दे दिया, बता दिए ना कि आप आत्मा है, तो अभी सब निष्काम कर्म की क्या जरूरत है? यस,
निष्काम कर्म हम करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता, बाकी कर्मों में तो हमें बंधन लगता है।
ये भी बिल्कुल सही बात है। एक मिसिंग लिंक है जो आप बताइए। आत्मज्ञान हो गया, आपको बता दिया आप आत्मा है, बस खत्म। तो निष्काम कर्म
मतलब कृष्ण के लिए कर्म, मतलब
ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। यस
सकाम कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो फिर
हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो मैं, जो भगवान ने बोला था उस चीज को, हमने टीका में भी पढ़ा था। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल ये है, अरे आप लोग कहीं भी कोई गलत नहीं बोल रहा है, प्रभु जी भी सबने सही बोल रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो है ये है कि आत्मज्ञान देने के बाद भी आत्मज्ञान हो नहीं जाता है। अगर बोल दिया जाए कि हम आत्मा हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमें आत्मज्ञान हो गया है। तो आत्मज्ञान होगा कैसे? हृदय बहुत सुंदर, आपने पढ़ा था कि हृदय शुद्ध ना होने के कारण आत्मज्ञान ठहर नहीं पाता है, उसको पास्ता भी है डिस्ट्रॉय कर देता है। जब पास्ता आता है तो आदमी भूल जाता है कि वह आत्मा है, भूल जाता है ना। तो हमने कहा था कि सिंपल सी बात कही थी, आत्मज्ञान केवल सुनने से नहीं होता है, उसके कैसे उसका हृदय शुद्धिकरण होगा? तो एक व्यक्ति जो क्षत्रिय है, जो समान समाज में रह रहा है, वह कैसे उस आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, यह विधि बताने के लिए भगवान निष्काम कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों? कौन बताएगा जो समझ में आया? ओके, ललित मोहन प्रभु बताएंगे।
जैसे आत्मज्ञान भगवान ने बताया लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता को बता रहे हैं अभी।
वेरी नाइस। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जो दैहिक चेतना में है वह कैसे अपनी स्थिति से प्रगति करते हुए आत्मज्ञान में स्थित हो जाए। एक तो होता है आत्मज्ञान आपने सुन लिया और दूसरा है उसमें स्थित होना, तो उसको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और इसीलिए फिर आगे जाकर बोलेंगे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, जो इस तरह से कर्मयोग करते हुए फिर इवेंचुअली भक्ति योग करते हुए शुद्ध हो गया उसका वर्णन करेंगे, फल का वर्णन करेंगे, साध्य अवस्था का वर्णन करेंगे। ठीक है, ओके। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रताप पुत्र, तुम यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने यहां देखें, तो कर्म करने से कर्म बंधन लग रहा है और भगवान कह रहे हैं कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आप देखेंगे शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्ञान। ज्ञान से युक्त होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तब उसे कर्म बंधन नहीं लगता है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप लोगों को होम्योपैथी का सिद्धांत पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जो बीमारी, जिस कारण से बीमारी होती है, जिस विष से बीमारी होती है, उसी विष की एकदम अल्प मात्रा देने से बीमारी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली होम्योपैथी में हम लोग बीमारी ही खाते हैं लेकिन इतनी अल्प मात्रा में कि वही उसकी काट बन जाती है। ये क्योंकि टेक्नोलॉजी, हाँ, सांप के विष को अगर ठीक से किया जाए तो सांप का विष सांप के विष को काट देता है। तो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है यदि वह आत्मा को लक्षित है, भगवान को समर्पित है, तो फिर वह कर्म बंधन को काट देती है। तो ज्ञान से युक्त होकर कर्म करने के बारे में भगवान बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बुद्धि योग, बुद्धि लगा करके कर्म करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक उदाहरण और देना चाहता हूं, इसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ब्रह्म कर्मणि भावतम। जैसे आप सब जानते उस उदाहरण को कि दूध बहुत अधिक पीने से व्यक्ति पेट खराब हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन दूध से बना हुआ दही खाने से पेट ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, कृष्ण को समर्पित होते हैं, तो वह कर्म बंधन को काटने का कारण बन जाते हैं। हम भक्त लोग उसको कई बार सुन चुके हैं तो हमें कोई नई बात नहीं लगती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है कि कृष्ण को कर्म समर्पित करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसको कई बार गीता में हम चर्चा करेंगे। कुछ बोल रहे थे आप? यस, कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। यस,
क्वेश्चन ये सांख्य जो यहाँ पे कहे, समझो भगवान ने क्या सांख्य होता है? सांख का मतलब काउंटिंग भी होता है।
सांख्य का मतलब काउंटिंग, सांख्य मतलब
संख्या, जिसे
सम्यक ख्यायते, अभी आगे आएगा शायद, सम्यक अच्छे से ख्याता करना, ख्याता मतलब व्याख्या करना। तो भगवान ने बताया था किस प्रकार से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा छोटी है, ऐसे करके आत्मा की चेतना के बारे में भगवान ने बताया था। तो इससे कुछ कुछ आत्मा का अंदाजा व्यक्ति को लगता है, इसे सांख्य कहते हैं।
24 तत्वों के बारे में,
यस, 24 तत्वों को भी सांख्य कहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा इसमें संक्षेप में बताया, मैंने 24 तत्वों के बारे में उतना नहीं बताया था, थोड़ा थोड़ा हिंट भगवान 13वें अध्याय में करेंगे और 7वें अध्याय में करते हैं। ज्यादा डिटेल में जो है डिस्कशन भगवान कपिल देव करते हैं, तो इसलिए अभी हमने पढ़ा था बीच में कि मैं संक्षेप में कह रहा हूं, अगर आपको याद हो, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें सांख्य जो है संक्षेप में बताया, अब तुम मुझसे निष्काम कर्मयोग या बुद्धियों के बारे में सुनो। तो सांख्य बताया लेकिन डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा बताया। ठीक है, गीता भूषण टीका। ज्ञान योग पर अपने निर्देशों का उपसंहार करने के बाद भगवान अब निष्काम कर्म योग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्ञान योग की प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो स्पष्ट है आत्मज्ञान के देने के बाद भगवान निष्काम कर्म बता रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान में स्थित होता है। तो स्पष्ट है, सांख का अर्थ है जो भी आप पूछ रहे थे, जिसके द्वारा सत्य को पूरी तरह से समझाया गया है। सम्यक ख्यायते, क्या सत्य है? जैसे भगवान बोल रहे थे बार बार कि आत्मा के लिए शोक मत करो, आत्मा का नाश नहीं हो सकता, ये सत्य है कि नहीं? और शरीर हमेशा अवश्यम भावी इसका विनाश होगा, इसलिए शोक मत करो, ये भी एक सत्य है। तो इस प्रकार के सत्यों का निरूपण करना यह सांख्य का पद्धति है, जिसके द्वारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। तो सांख्य का अर्थ आपने क्या सीखा? जिसके द्वारा आत्मा के सत्य की व्याख्या की जाती है। सम्यक, सम्यक मतलब बढ़िया से, ख्यायते मतलब व्याख्या करना, समझाया जाता है। इस प्रकार यह उपनिषद के समतुल्य है। ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए, वैदिक जो ज्ञान है उसमें प्रायः कर्मकांड है। प्रायः इसलिए, आगे बातें आएंगी, कि सारा सारा कर्मकांड नहीं है, प्रायः कर्मकांड है, और कर्मकांड में ये बात बिल्कुल नहीं आती है कि आप आत्मा हो। अभी तो ये बात आएगी कि स्वर्ग जो है वह शाश्वत स्थान है, वहां अगर आप पुण्य करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध नहीं होंगे सॉरी, पुण्य करके आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। और उपनिषदों में ये ज्ञान दिया जाता है, इसकी भी आप लोग टीका जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएंगी बातें, कुछ शब्द हैं वाक्य हैं जिसमें बताया जाता है कि स्वर्ग जो है यह शाश्वत स्थान नहीं है। आप ट्रांजिशन समझ रहे, ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, ज्ञान का लेवल का परिवर्तन क्या है। कर्मकांड में बोल रहे हैं स्वर्ग चले जाओ बहुत बढ़िया है, लेकिन उपनिषद में बताया जाता है कि नहीं, स्वर्ग प्राप्ति सही नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति करना चाहिए, आत्मा इस प्रकार से शाश्वत है। आत्मा आत्मज्ञान जो है उपनिषद में दिया गया है, तो इसलिए इस बात को बोला जा रहा है कि ये जो ज्ञान आत्मज्ञान भगवान ने दिया ये उपनिषद ज्ञान के समान है। क्या कोई समझ पाया या बहुत मुश्किल? ठीक है। सांख्य का अनुशीलन करने के लिए इस ज्ञान को ऐसा बुद्धि आपको दिया गया। श्लोक क्रमांक सॉरी कहां गया 12 से 30 में देखिए श्लोक शुरू कैसे हो रहा है। श्लोक में क्या बोला, एषा ते विहिता सांके बुद्धिर। तो यहां पे एक इसको विच्छेद कर रहे हैं, बुद्धि और योग को अलग कर रहे हैं। एषा बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का ज्ञान आपको मैंने दिया, अब आप योग के बारे में सुनिए, ऐसे तोड़ रहे हैं इसको। मेरी बात आप समझ रहे हो? संस्कृत का श्लोक है इसमें, जो हम लोग श्लोक की डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं बुद्धिर योगे, तो वो ऐसा बुद्धि और योग को अलग कर दे रहे हैं। अर्थात अभी तक मैंने आपको ज्ञान की प्राप्ति कराई, ऐसी बुद्धि दी जिसके द्वारा आप आत्मा और शरीर का अलग अलग विश्लेषण कर सको, अब मैं आपको योग के बारे में बता रहा हूं जिसके द्वारा आपको ये आत्मज्ञान प्राप्त होगा। मुझे पता है मैं सब फिलोसफी का लैंग्वेज यूज कर रहा हूं और टफ होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है बताना।
ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान 9वें अध्याय में ये भी देते हैं, पर प्योर डिवोशनल सर्विस में श्रवणम कीर्तनम सब कुछ जोड़ते हैं।
यस, देखिए हर जगह हर शब्द का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ होता है। जैसे घृणा का मतलब होता है हेट, लेकिन घृणा का मतलब होता है प्रेम भी, अगर आपने अचामिली प्रसंग सुना होता। हाँ, तो अब एक ही अर्थ नहीं लेना चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ। यहाँ पे तो भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन नहीं किया अभी तक, केवल आत्मा के ज्ञान के बारे में वर्णन किया। तो यहां पे ज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान शरीर से भिन्न, यही तो चर्चा किया था ना अभी तक। तो बोल रहे हैं कि 12 श्लोक से लेकर नत्वे वाहम जातु नाशम, याद आ रहा है? ऐसा कोई समय नहीं था कि ये राजा नहीं थे, तुम नहीं थे और मैं नहीं था। ये श्लोक से लेकर के तस्मा सर्वाणी भूतानी, 12 से 30 श्लोक में आत्मज्ञान के बारे में भगवान ने बताया। अब क्या कह रहे हैं देखिए, यदि आपके हृदय में अशुद्धियों के कारण वह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात आपका शोक नहीं जा रहा है, तो कर्म योग अर्थात योगे बुद्धिर योगे में से बुद्धि को अलग, योगे को अलग कर दिया है। योग को निष्पादित करने के लिए आवश्यक ज्ञान के बारे में सुने जो अब कहा जाएगा और जिसमें आत्मज्ञान शामिल है। ये लाइन थोड़ा समझिए, जब व्यक्ति कर्मयोग करता है तो उसकी हृदय शुद्ध होता है, जब उसका हृदय शुद्ध होता है तो उससे वह धीरे धीरे आत्मज्ञान को अनुभव कर पाता है अपने हृदय में। तो यानी कि कर्म योग में ज्ञान अंदर बना हुआ है, अंदर उसके कर्म योग में ज्ञान छुपा है। जैसे कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है तो भी भले ही वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है, लेकिन नियम ऐसे बनाए गए हैं कि अंततो गत्वा उसका हृदय शुद्ध हो। ये बात आपको पता है, समझ में आ रही है? कर्म कांड, ये मेरे ख्याल से भी समझ में नहीं आई बात। देखिए वेद जो है ये एक महान उदार मां की तरह है, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी गर्हित इच्छाओं से युक्त क्यों ना हो, वेद उसको इंग्लिश में कहेंगे अकोमोडेट करता है। कोई मांस खाना चाहता है, अवैध संग करना चाहता है, अवैध संग का मतलब बहुत सारी स्त्रियों से संग करना चाहता है, सबकी व्यवस्था वेद ने की है, अप्सराओं का भोग करो सर जा करके, लेकिन वेद के कर्म कांड का पालन करो। स्वर्ग में अवैध संग नहीं होता है, कुछ अवैध संग होता है लेकिन कोई पाप नहीं लगता। तो उसी के अंदर भी भले ही भौतिक इच्छा से कर्मकांड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नियम पालन करने से उसका हृदय शुद्धिकरण भी होगा। बहुत धीरे धीरे होगा लेकिन होगा। अब वह एक दिन जाकर के उपनिषद के ज्ञान यानी ज्ञान कांड की प्राप्ति करने के योग्य बनेगा। यह तो कर्म कांड के लिए है। तो सोचिए अगर कर्म योग किया जाए, कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाए तो कितनी जल्दी ज्ञान उत्पन्न होगा। मेक सेंस?
यस। जैसे अलग अलग जो जीवात्मा है उनकी अलग अलग लेवल है।
यस yes.
तो शास्त्र जो है उनको उसके अनुसार बता रहे हैं।
यस yes.
अगर वो उस ऑथोरिटी जैसे शास्त्र ऑथोरिटी अगर उसको पालन करेंगे।
यस
yes. इवन वो भोग करे लेकिन अगर ऑथोरिटी के अंडर में रहकर
तो फिर क्रमशः विकास करेंगे,
विकास होगा और हृदय शुद्ध भी होगा।
yes.
और
यस yes. यही बात है। तो यानी कर्म योग में ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यक्ति आत्मज्ञान को के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन अपने आप ही व्यक्ति का आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है कर्मयोग के द्वारा, बिकॉज वह भगवान से अपने कर्मों को लिंक कर रहा है। ठीक है। ऐसा श्रुति के द्वारा पुष्ट होता है। तम एतम वेदान वचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं। ये बृहद अरण्यक उपनिषद में बताया गया है। तो यानी अपने कर्मों के द्वारा कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हैं। ये ब्राह्मणों के कर्म हैं और ये ब्राह्मण के कर्म जब अपने अपने ब्राह्मण का अपने कर्म कृष्ण को समर्पित करते हैं तो उससे वे भगवान के जानने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। ये ब्राह्मणों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है श्रुति वाक्य में। यह है अलग अलग वर्णों में उनके अलग अलग कर्मों के अनुसार निश्चित किया जाएगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में नहीं आई। ब्राह्मणों का उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्राह्मण अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित करते हैं भगवान को जानने के लिए, तो उसी प्रकार से अन्य वर्णों को अपने कर्म समर्पित करने हैं भगवान को जानने के लिए। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः समसिद्धिर लभते नरः, ये बात गीता में आई है। अपने अपने कर्म कृष्ण को समर्पित कर व्यक्ति करे। देखिये ये भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ स्तर नहीं है लेकिन फिर भी यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की एक पद्धति है। हरे कृष्ण मंत्र जब करना, भक्ति करना, ये तो फिर एकदम फास्ट ट्रैक तरीका हो गया, सबसे फास्ट ट्रैक तरीका। लेकिन अगर इस पे भी अधिकार नहीं है तो व्यक्ति को कर्म कृष्ण को समर्पित करने होंगे। अगर आप इसको कृपया जाकर के 12वें अध्याय में देखिएगा जब भगवान कहते हैं कि भक्तियों का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों को मुझको समर्पित करो। याद आ रहा है आप लोगों को? जो पढ़ेगा उसको याद आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसको कम से कम जाके पढ़ना चाहिए। इसके अभ्यास के परिणामों को बताते हुए अंतिम श्लोक में निष्काम योग की प्रशंसा की जा रही है। अंतिम श्लोक मतलब 38 में लाभ लाभ जया जयो वाला श्लोक था, उसमें बोला था ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। इस समझावट के साथ इन कार्यों को करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या प्रशंसा है इस निष्काम कर्म योग की? आप कर्म करना बंद मत कीजिए, आप युद्ध करना बंद मत कीजिए, लेकिन उसको भगवान की आज्ञा समझकर भगवान की को समर्पित करते हुए करने से आप कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाएं। आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ और भगवान के आदेशों से इन कार्यों को बड़ी ऊर्जा के साथ निष्पादित करते हुए आप आत्मज्ञान में स्थित होकर के संसार को पार करेंगे जो बाद में आपके भीतर प्रकट होगा निष्काम कर्मयोग के परिणाम स्वरूप। बहुत टफ लग रहा है मुझे, लग रहा है भक्तों। इसका अर्थ बहुत सिंपल है। आत्मा का जो स्वरूपगत आनंद है, स्वरूपगत समझते ना, सच्चिदानंदमय, हम लोग तो हमारा वही स्वरूप है, तो हम स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको लक्षित करके आत्मा को आनंद की मुझे प्राप्ति करनी है, इसलिए भगवान का यह आदेश मेरे लिए है। मैं मान लीजिए क्षत्रिय हूं, अर्जुन जी सोचें, तो पूरी ऊर्जा के संग है, पूरी शक्ति के संग युद्ध करो, इसमें मत सोचो कि तुमको पाप लगेगा। ये बात समझ में आ गई? और ऐसा करने से क्रमशः भगवान की कृपा से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम्हें इस आत्मा के आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। जब ये आत्मा के आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी तब उसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान देना, कर्म योग ये आत्मा के लिए शाश्वत पद्धति नहीं है। जब तक उसका हृदय शुद्ध है और वह भक्ति योग में स्थित नहीं हो जाता तब तक वह कर्म योग करे। अंततो गत्वा भक्ति ही ऐसा है जो साधन और साध्य एक ही है। शुद्ध अवस्था में भी आप भक्ति प्रेम भक्ति करते ही रहेंगे। लेकिन कर्मयोग में क्या है, अगर वह भक्ति नहीं कर सकता तो कर्मयोग कम से कम करे और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति करे। यस,
स्टेटमेंट बोला कि कर्मयोग करता रहेगा फिर उसको आत्म साक्षात कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और इस चीज को भगवान गीता में बोलते हैं यस,
सेवा
बहुत डिफरेंट है। मैं देखिए, मैंने बोला था कर्म योग में आप क्षत्रिय वैश्य जो भी हमारे वर्णाश्रम के कर्म हैं उनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म अंतर है। भक्ति योग में वो कर्म किए जाते हैं जिससे कृष्ण संतुष्ट हो, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कर्म योग में कर्म करने के बाद फल कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं, भक्ति योग में कर्म ही कृष्ण के लिए होता है। जैसे हरि नाम जप करना, ये जप करना ये कर्म योग नहीं है,
ये यहाँ पे तो निष्काम कर्म योग,
यहाँ पे निष्काम कर्म,
निष्काम कर्म योग जो मैंने समझावट है इसमें कि निष्काम कर्म मतलब आप जो कार्य वो उससे आसक्त होते लेकिन फल से आसक्त नहीं होते।
यस, लेकिन कौन से फल से आसक्त नहीं होते,
जो भी आप कार्य कर रहे हैं जैसे मान लीजिए।
कोई ये समझावट थोड़ा ठीक नहीं है, सकाम कर्म से आसक्त नहीं होते। स्वर्ग जाना, इस जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना, इसको फल कहा जाता है, इसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के फल के प्रति आसक्त होते हैं। जब तक आपकी कोई साध्य नहीं है तो साधन करने में उत्साह कैसे आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग में, सकाम कर्म योग क्या कहा जाए, लेकिन सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग में यही अंतर है कि सकाम कर्म में व्यक्ति कर्म करता है ताकि उसको या तो इस जगत में कुछ लाभ हो या फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन निष्काम कर्म में व्यक्ति आत्मा के आनंद की अनुभूति करना चाहता है। ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसे कोई फल चाहिए नहीं। हमने खूब चर्चा किया था कि बिना फल के आप कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फल का अर्थ है भौतिक फल। ऐसा नहीं कि आप कोई रिजल्ट नहीं चाहते, अब हम हरि नाम भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा तो ना कि बिना उद्देश्य के हरि नाम कर रहे हैं। अगर कृष्ण की संतुष्टि एक उद्देश्य है तो यह भी एक उद्देश्य है ना कि कृष्ण के चरणों में एक दिन मुझे प्रेम की प्राप्ति होगी। उसके बिना भक्ति करना तो वास्तविक रूप से साधन भक्ति है ही नहीं।
नहीं, योग में तो जैसे अपने आप ये चीज डिटैचमेंट और नॉलेज तो योग में आता ही है व्यक्ति,
आता है अगर ठीक प्रकार से किया जाए। इसीलिए तो बोल रहे हैं यहाँ पे बुद्धि, बुद्धि के द्वारा करो कि नहीं, इस जगत के भोगों से मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, आत्मा के आनंद की प्राप्ति करो तब जो है मैं संतुष्ट होऊंगा। हमने किसकी चर्चा करी थी कि इस जगत के सुखों का अनुभव भक्त को या व्यक्ति को होता है, फिर भी वह उनको त्यागता है ताकि वह उच्चतर भोग को प्राप्ति करे, सुख की प्राप्ति करे, आत्मा के सुख की प्राप्ति करे। तो जब हायर लक्ष्य रहता है तभी वह लोअर वस्तुओं को वो छोड़ सकता है। तो फल का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति और भौतिक भोगों की प्राप्ति। और यह कैसे होता है, जब व्यक्ति का अधिकार हो निष्काम कर्म पे। जो व्यक्ति और लोअर लेवल का है वह तो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा, कहता नहीं मुझे स्वर्ग चाहिए, और लोअर लेवल का होगा तो कहता है स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जगत में सुख चाहिए। आजकल जो लोग इसी लेवल पे हैं उन्हें केवल इस जगत में प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं करते, स्वर्ग पे भी विश्वास नहीं करते, है ना। तो यहां पे बात आ रही है कि पूरी ऊर्जा के संग आप उसको संपादन करो, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। वह निष्काम कर्म योग, अच्छा इसको थोड़ा समझ लीजिए, प्रैक्टिकल लेवल से समझाता हूं। परम पूज्य कदम कानन महाराज स्वयं बता रहे थे, कह रहे थे जब वो इस मंदिर में मैनेजर थे तो वह गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे, तो गृहस्थ आश्रम में जब थे तो कहे कई साल सेवा अच्छे से करने के, पूरी शक्ति से सेवा करने के बाद जब वह चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगे तो उसको पीना चालू कर दिया। अब समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या क्यों चैतन्य चरितामृत 10 साल 5 साल पहले जब जितने समय सेवा करी तब क्यों नहीं पी पा रहे थे, क्या उनके पास आंखें नहीं थी या बुद्धि नहीं थी ना, क्या कारण था। यस, उनका हृदय का शुद्धिकरण उस समय नहीं था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक साधकों की होगी, हम सोचे कि तुरंत ही हम बस भागवत को पीने लग जाएंगे। अगर अधिकार है तो पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अधिकार नहीं है तो अब बैठेंगे तो पीने के बजाय हम सोने लग जाएंगे। तो अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम भागवत ना पढ़ें, लेकिन अपने अधिकार को जज करना बहुत जरूरी है। यस, और दूसरे के अधिकार को जज नहीं करना चाहिए। अधिकार बहुत सिंपल है, उस कार्य को करना आपके लिए बहुत सहज लगता है आपको। तो प्रायः लोग कर्माधिकारी होते, कर्माधिकारी मतलब वो कर्म बड़े आसानी से कर लेंगे, भजन करना भागवत पढ़ना बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए समान रूप से जो प्रभुपाद सिस्टम दिया है वो ये है कि सुबह हम डायरेक्ट भक्ति करें, शाम को डायरेक्ट भक्ति करें, और दिन में हम एटलीस्ट कर्मयोग करें, एटलीस्ट, या अपने कर्मों को कृष्ण को विभिन्न प्रैक्टिकल सेवाओं के द्वारा समर्पित करें। नहीं तो संभावना ज्यादा ये है कि हम माया योग करेंगे, माया की सेवा करेंगे बनाए कृष्ण की सेवा करने, या प्रीचिंग के अलग अलग कार्यों में हम संलग्न। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब आप शुद्ध हो जाओगे, आपको बस आप भागवत पढ़ रहे हो, आपका मन कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब आपका अधिकार अब भागवतम पे ही है। इसको बहुत सुंदर तरीके से गौर कृष्ण महाराज समझाते थे, कहते कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं, आपसे होगा ही नहीं कर्म, आलस की वजह से नहीं, इतना रुचि है। जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपने, मैंने सुना ऐसे, अपने सर्वेंट को बोले महाराज सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहते हैं, तो महाराज बोले तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बेचारा क्या बोलेगा? महाराज बोले कि तुम देख रहे हो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तुम इतना क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बेचारा क्या बोलेगा? बोले इतना तो हम पढ़ नहीं, फिर तो हम महाराज हो जाएंगे ना, फिर इतना है कि नहीं, तो उसका अधिकार नहीं, तो महाराज की सेवा करेगा धीरे धीरे करके, फिर उनको भी टेस्ट मिल जाएगा। यस,
मैं कह रहा था कि भक्ति में एक तो है कि प्रोसेस के बाद हम धीरे धीरे सेवा करेंगे, उसके बाद शुद्धिकरण होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्राबद्ध भी है कि जो है कि बहुत सारे भक्तों का जो है कि हम प्रीचिंग में ही जाते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, बहुत जल्दी माला करना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी माला में उनको रुचि भी आ जाती है, ये भगवद गीता में है। तो एक तो प्राबद्ध भी है कि जो पिछले जन्म में मान ली बहुत अच्छी भक्ति करके आया,
थोड़ा सा आप शब्दों को मिस यूज कर रहे हैं, प्रारब्ध और भक्ति अलग अलग चीज है, प्रारब्ध कर्म एक अलग चीज है और पूर्व के संस्कार भक्ति की अलग चीज है। ऐसे बोलिए कि उनका पहले का पूर्व का भक्ति का संस्कार है, प्रारब्ध से भक्ति प्राप्त नहीं होती। फिर भी हाँ चलिए,
ध्रुव महाराज के केस में आ जाता है कि कहा जाता है कि काफी जन्मों तक उन्होंने पहले भक्ति कर ली थी और ये थोड़ा सा रह गया था और इस कारण से इतनी डेडिकेशन के साथ वो भक्ति कर पाए।
तो वो तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति, देखिए जब मैं अधिकार बोल रहा हूँ तो अधिकार का शरीर से कोई मतलब नहीं है। जिसने मान लीजिए पहले जन्मों में खूब भक्ति की हुई है, हो सकता है वो भक्ति की शुरुआत से उसको भागवत में हरिनाम में बहुत रुचि प्राप्त हो जाए। तो अधिकार का शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक छोटी सी कथा इसमें ये है, एक बार अलबंदारू यमुनाचार्य जी जब छोटे बच्चे थे, वह एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित को हराने के लिए गए राजा की सभा में। तो कह रहे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम मुझसे क्या बहस करोगे? तो बोले अगर ज्ञान का जो मतलब शरीर के अनुपात के अनुसार ज्ञान होता तो भैंस का शरीर तो आपसे बड़ा है। तो फिर उसके इसका मतलब ये तो नहीं कि भैंस का ज्ञान आपसे अधिक है। वो चुप हो गए, सब लोग हंसने लगे। तो खैर ये बात यह है कि जो अधिकार है जन्म जन्मांतर की भक्ति के कारण होता है। तो ये अधिकार अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो किताब लेके बैठे हैं तो क्या होता है। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको बोल रहे किताब पढ़िएगा मत, ये नहीं। नियमित रूप से पढ़िए और सेवा भी करिए, इससे हृदय बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत कृपा मिलती है, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ पाते हैं, अपने आप भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस ठीक है, आप देखेंगे अकस्मात रूप से अपने जीवन में, देखिए आप हरिनाम करते रहिए बढ़िया से, शास्त्र पढ़ते रहिए, सेवा करते रहिए, जो शास्त्र आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता था वह आश्चर्यजनक रूप से न सिर्फ समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत इंस्पायर करेगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, एकदम यह अनुभव से मालूम चल रहा है। तो हर सेवा जो आप कर रहे हैं वह सब भगवान को, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, वह निष्काम कर्मयोग आत्मा और भगवान की ओर निर्देशित होने से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। स्पष्ट है, तो भगवान की ओर समर्पित है इसलिए वह मुक्त करता है जीव को। यानी कि जैसे आप किताब बेच रहे हैं, खैर ये तो भक्ति ही है, या गोविंद रेस्टोरेंट को चला रहे हैं जैसे महाराज का एग्जांपल है, या और कोई कार्य कर रहा है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है इसलिए यह मुक्त ही करता है। एक और उदाहरण आपको दूंगा, गुणार्णवा प्रभु इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट के बोरे गिन रहे थे, तो उनके मन में आया कि अरे भाई सब भक्त लोग तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, मैं सीमेंट के बोरे गिन रहा हूं, ये क्या है? तो प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही वह सीमेंट के बोरे गिन रहे हैं लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु के कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वह शुद्ध भक्ति ही है और उससे वह उनकी प्रगति होती। मेक सेंस टू यू? परम पूज्य जयप्रदा का महाराज ने तो सीमेंट के बोरे तक उठाए हैं मंदिर को बनाने के लिए, सोचिए बोरे उठाए, हमें से कितने बोरे लोगों ने बोरे उठाए, बोरे गिने भी नहीं होंगे, उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, वो भी साइकिल पे लाद लेकर ले लेकर को जाते थे। तो गौर गोविंद महाराज का मुझे पता नहीं, लेकिन उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सेवा किया है। तो सेवा का बहुत महत्व है भगवान की भक्ति में, बहुत महत्व। काम का महत्व नहीं है, काम करना और सेवा करना बहुत अंतर होता है, मैं इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन सेवा मतलब भगवत लक्षित भगवान को संतुष्ट करने के लिए, काम होता है निपट गया, दिस जॉब डन, जॉब वर्क नहीं कर रहे हम लोग यहां पर। गीता में बताया गया है कि सकाम कर्म जानवरों पुत्रों या राज्य को प्राप्त कराता है, जबकि निष्काम कर्म ज्ञान की प्राप्ति कराता है। आपके उत्तर हो गया प्रश्न का, उम्मीद है। सकाम कर्म, इस सकाम कर्म का लक्ष्य क्या है? हॉर्स पावर, मतलब कुछ आजकल के जमाने में कार वार प्राप्ति हो जाए, एक घर बंगला बंगला मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, ये सब सकाम कर्म है, स्वर्ग प्राप्ति कर। और निष्काम कर्म का उद्देश्य है कि हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें। तात्पर्य को पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु।
वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख के उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है।
मैं समझता हूँ, इसमें कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, सम्यक ख्यायते, हमने ही चर्चा कर लिया था। यस।
और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था, वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा।
हाँ, अब ये बताइए कि ये विचार उनकी स्वयं की इंद्र तृप्ति पर कैसे आधारित था? यस, माइक आपके पास में, कोई बोलेगा? लाइन समझ, कोई हम पढ़ लेते हैं फिर हाँ चले पढ़ो आगे पढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या मतलब है इसका? यस,
क्योंकि इसमें जो है कि वो अपने बैराग के गुण को दिखाना चाहते कि मैं डिटैच हूँ
ना,
नो
वो कर रहे थे जो वो चाहते थे।
स्पष्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए। यस, ये लाइन का अर्थ क्या है? वो क्यों क्या क्यों बोल रहे हैं कि वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे थे? यस,
उनका जो कर्तव्य था वो उसको कर नहीं रहे थे। और दूसरा
ओके ओके, क्या कर्तव्य था उनका? प्रधान कर्तव्य
युद्ध करना।
हाँ,
युद्ध करना ही तो है ना,
युद्ध करना, दैट्स अ पॉइंट। भगवान की संतुष्टि के लिए वह भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान इस युद्ध को चाहते हैं, उसको भुला करके वह ये सोच रहे हैं कि मैं किस में सुखी रहूंगा या दुखी रहूं। वो कह रहे हैं, वो सोच रहे थे, मैं रिवाइज करा रहा हूं, इस हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इनको मार दूंगा, मुझे राज्य प्राप्त हो जाएगा तो भी मैं कैसे सुखी रहूंगा, तो मैं कैसे सुखी रहूंगा, ये है इंद्रिय तृप्ति की भावना। अब थोड़ा सा हम चली छोड़िए बोल दें, हम लोग प्रसाद खाते समय कभी कभी घी ऊपर से डालते हैं। अब वह घी क्या ठाकुर जी को अर्पित होता है? तो ये क्या है? ये योग है कि ये इंद्रिय तृप्ति है? इंद्रियां बोल रही हैं, इंद्रियां बोल रही हैं, बहुत कठोर। आज ही मैंने शिक्षा को स्वीकार किया, वह घी अगर भगवान को अर्पित नहीं है, हमने सेपरेटली रखा है कि भाई धाल में घी कम है ऊपर से डाल लो, तो ये एक अपराध है। आपके गुरु महाराज का, थोड़ा मैं कठोर बोल रहा हूं, पहले से तैयार रहो, आपके गुरु महाराज का महाप्रसाद आएगा तो क्या ऊपर से आप घी डालेंगे या हम लोग घी डालेंगे? क्योंकि हमारा तो बहुत श्रद्धा है उस भगवान महाराज के प्रसाद के ऊपर, और भगवान के प्रसाद के ऊपर हम घी ये सब कुछ डाल रहे हैं, हम ही ने किया है। तो आज मैं सुन करके बहुत रिफ्लेक्टिव हो गया, यहां तक कि नमक भी नहीं डालना चाहिए। ठाकुर जी को नमक कम लगा वाली दाल खा गए तो हम कैसे दाल में नमक डाल रहे हैं? फिर प्रसाद नहीं है ना। हाँ, भगवान को अलग से नमक दिया है तब ठीक है, तब ठीक है, लेकिन अलग से नमक नहीं दिया है तो अलग से नमक खाना, देखिए ये स्टैंडर्ड रेस करने वाली बात है, कितना कौन स्वीकार करना चाहता है उसके ऊपर। यस, एक भक्त हैं, उन महाराज जी हैं, उनके पर्सनल सर्वेंट नमक डालना भूल गए, वो महाराज पूरा प्रसाद खा गए और बोला नहीं कि नमक नहीं। अब देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में, हमारे मन में एक वो आ रहा ना, विद्रोह आ रहा है, ये सब क्यों बोल रहे हैं, जरूरी था ऐसा बताना? लेकिन सुनने के बाद आप सोचेंगे कि नहीं, ये भाव बिल्कुल बिल्कुल सही भाव, भगवान को जब घी नहीं पड़ा तो मेरे को घी क्यों पड़े, मैं कैसे घी खा लूं? फिर क्यों बोल रहे हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं? हम दास तभी तक हैं जब तक हमारी दाल में घी पड़ता है, हैं? वैसे दास हैं हम। अब देखिए कि आपको लग रहा हो कि अर्जुन तो युद्ध में तीर चलाने के लिए दिक्कत कर रहा है, लेकिन हमारी भी तो कहीं ना कहीं आसक्तियां हैं जिसकी वजह से हम कृष्ण को उस तरह समर्पित नहीं कर रहे। ऐसे इसको और अगर बढ़ा लिया जाए तो मान लीजिए मैं और आप मित्र हैं या आप मेरे स्वामी हैं, आपको तो आप सामने बैठ गए, आपको तो मैं घी दे नहीं रहा हूं और अपनी कटोरी में दबा दबा के घी डाल के खा रहा हूं, यही तो अर्थ हुआ ना, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि कोई पत्नी है, पतिव्रता है, वह पति को तो घी ना दे और अपनी कटोरी में घी डाल डाल के खाए, तो क्या पति को डायबिटीज हो गई है, ना कृष्ण को डायबिटीज है, ना कृष्ण मोटे हो जाएंगे, ना क्या चक्कर। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इंद्रियां हमारी कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती, तो उनका निग्रह करना बहुत जरूरी, तभी भगवत प्राप्ति हो। खैर आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कुछ कुछ बातें थोड़ी कठोर लगती हैं। यस,
दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है।
बेसिकली इंद्रिय तृप्ति मीन्स व्हाट आई फील लाइक डूइंग, क्या मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या अच्छा है वो है इंद्रिय निग्रह है, और जो मुझे क्या जो करना अच्छा लगता है वह है इंद्रिय तृप्ति। यस, थोड़ा लंबा है मैं, लेकिन चाहता हूँ पूरा कर लिया जाए। यस,
अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा।
यस, यानी देहात्म बुद्धि से भगवान ने बाहर निकाला। आगे
उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि
हम सब
शाश्वत आत्मा हैं।
ये स्पष्ट है, प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं पहले के श्लोकों को। यस,
हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है।
स्पष्ट है, वासान से जीर्ण आने। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी अब क्या कर रहे हैं, 12 से 30 जो है उसको समराइज करते चल रहे
हैं,
टीका को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपैंड कर दे। यस,
भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक
मतलब एनालिसिस
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवोती के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था।
बहुत सिंपल सी बात है, वास्तविक सांख्य में भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है और नास्तिक सांख्य में भगवान को गायब कर दिया जाता है, बस सिंपल। यस,
उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वो प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं।
नास्तिक सांख्य के अनुसार सृष्टि अपने आप ही हो जाती है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। पढ़िए,
इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है।
क्या स्वीकार किया है वेदों और गीता ने, क्या स्वीकार किया है? भगवान के द्वारा सृष्टि होती है और एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सृष्टि के पहले है इसलिए उनका शरीर माया द्वारा सर्जित नहीं है। पढ़िए,
वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी।
किसी को श्लोक पता है? नहीं 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 नहीं, मया दक्षिण प्रकृति अर्थात उनकी दक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रकृति पे दृष्टिपात किया।
काम विषय से भूता है धारियामी
अहम भूता। नहीं, ये भगवद गीता का श्लोक नहीं है। स एक शतः बहुश्यामा, हमने कई बार चर्चा किया था, भक्ति वृक्ष में किया था। स एक शतः, सह एक शतः, उन्होंने देखा बहुश्यामा और वो बहुत हो गए। अब ये देखो उपनिषद का श्लोक है, हमारे प्रभु जी कह रहे हैं श्लोक नहीं, ये श्लोक है उपनिषद का, स एक शतः बहुश्यामा, कई बार से कोट किया गया था जब हम लोग भक्ति वृक्ष के दूसरे अध्याय को दूसरे चैप्टर को पढ़ा रहे थे कि हमारा अस्तित्व क्यों है, जीवों की सृष्टि क्यों की गई है, याद आ रहा है? यस,
ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं।
ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई समझाना नहीं है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस मानसिकता का उपयोग वेद करते हैं और उनको, ताकि वो उनको शुद्धिकरण के प्रोसेस में डालते हैं। तुम भोग करना चाहते हो, ऐसे क्यों नहीं करते हो? अच्छा भोग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी, लेकिन ये काम, ये थोड़ा सा ये आपको नियम पालन करने पड़े, ये करेंगे तो उसके द्वारा है कम से कम वेद की एक अध्यक्षता में आ जाते। पढ़िए।
इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है।
चलिए इस लाइन को समझा दीजिए तो मजा आए, बहुत आनंद आए, इस लाइन को समझाइए। भगवान से सायुज्य प्राप्त करना इंद्र तृप्ति की सीमा है। अरे माइक पे बताइए।
इस मानसिकता में भगवान के द्वारा जो है वो मिल जाना चाहता है, सायुज मुक्ति भी भगवान में मिल जाना, और जो भगवान में मिल जाना मतलब भगवान की सेवा नहीं करने पड़ेगी।
यस, इंद्र तृप्ति में क्या करते हैं, सेवा नहीं करते, तो सेवा की बहुत लंबे समय तक छुट्टी हो जाना, ये सायुज मुक्ति है, क्योंकि उसके बाद भी वहां से गिरना होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक छुट्टी, कोई सेवा नहीं करना, कोई प्रीचिंग करने भी नहीं आएगा। यस,
यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है।
कौन सा श्लोक है? बहुत सुंदर। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान अर्थात जो समझ गया कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, सुख कहाँ है, समझ में? जैसे आप कुछ सामान ढूंढते हो तो पहली चीज क्या आप देखते हो, अरे वो सामान नहीं है, फिर आप सोचते हो वो कहाँ है, मेक सेंस? तो व्यक्ति समझ गया इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है, वह ढूंढते ढूंढते जब उसकी खोज पूरी होती है तो वह कृष्ण के पास आता है। यस,
ज्ञानवान का अर्थ तो ये जो मैंने देखा था कि जो ये जान जाता है भगवान ही सबको, वासुदेव सर्वमिति।
एक जन मैं नहीं जान पाता, यहाँ पे लिखा तो है ना। चलिए।
अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में,
आपका जो कहने का अर्थ है वो ये है कि ज्ञानवान जब उसे ज्ञान हो जाता है, यस, लेकिन जो
ज्ञानी कौन है,
जो व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है वो तो ज्ञानी है नहीं। जब उसको ये ज्ञान हुआ कि इंद्र तृप्ति में सुख नहीं है, तो उसे ये नहीं पता चला कि वाकई सुख कहाँ पे है, अब वह सुख का अन्वेषण करता है। प्रभुपाद जी इसको पांचवें अध्याय में बताएंगे कि सांख्य में व्यक्ति खोज करता है कि जगत का स्रोत क्या है, और जो व्यक्ति समझ गया कि स्रोत कृष्ण है, सेवा कर रहा है, तो वो ज्ञानवान है, डायरेक्ट ज्ञानवान है। लेकिन ये व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि भोगों में सुख नहीं है, भोग में सुख नहीं है, लेकिन सुख कहाँ है वो उसकी खोज करते करते जब सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो भगवान को शरण में आता है। जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, एक ही उसके लेवल्स की बात की जा रही है। यही संस पर जाप भोगतो, उसका मतलब रामते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भोगों में नहीं लगता है, लेकिन सुख कहाँ पे है वह उसको तुरंत नहीं मालूम चल जाता। कितने लोग हैं जो भोग नहीं कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं, लेकिन ये ज्ञान हो गया कि इंद्र तृप्ति में भोग नहीं, सुख नहीं। यस,
बाद में लिखते हैं कि जो हरे कृष्णा महामंत्र में आया है उसने अनेक जन्मों में तप दान का सब कुछ किया है, तब जाके वो आया, तो इससे भी सिद्ध होता है कि मैंने कई जन्मों तक
अनुशीलन करते हैं, बहुत सारा अनुशीलन करने के बाद उसकी श्रद्धा भगवान की उसमें,
तो जाके वो मंत्र जप रहा है या फिर भगवान कृष्ण।
पढ़िए।
उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है शिष्य
से, कट गई थी, से पढ़िए। अर्जुन ने
कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है।
श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों आचार्यों को मिक्स मतलब मिला दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भक्ति योग कहेंगे और बलदेव विद्याभूषण जी कर्मयोग कहेंगे, उनको दोनों को मिला दिया, तो कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा मतलब कोई मतभेद नहीं है, ठीक है। यस,
यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्वान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है।
अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से ले जा रहा है, इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत लंबा है। आप वहां पे लिखा हुआ है बोधयंतः परस्परम, ये सामान्य कर्म योग नहीं है। दशम अध्याय में जो गीता के चतुश्लोकी गीता है उसमें है ना, भक्त लोग इकट्ठा होकर के बात करते हैं भगवान के बारे में, तो ये सीधा डायरेक्ट भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति है। तो ये प्रपद वर्णन कर,
तेषां सतत युक्ता ना,
यस, उसके पहला वाला श्लोक क्या है,
इसमें
हाँ उससे पहले वाला श्लोक क्या है
वो तो वही
चार श्लोक को बता रहे हैं दसवें दसवें श्लोक में वर्णित है हाँ क्या तेषाम 10.10 8 9 10 11 तो आप 11 का वर्णन कर रहे हैं ना
हम 10 का कर रहे हैं
10 में क्या है
तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि
बुद्धि
यस और वो प्रीतिपूर्वक भजन किसका का स्वरूप क्या है
प्रीतिपूर्वकम का मतलब होता है कि मतलब ईमानदार रहता है व्यक्ति
आप नवा श्लोक को बोलिए
बोधयन्त
परस्पर कथयन्तस्य माम नित्य तो किसी के बारे में हम नित्य कथन कर रहे हैं तो ये प्रीति लक्षण है कि नहीं
हाँ,
तो जो लक्षण है वो क्या है कथयन्तस्य माम नित्य तो शंति च रमन्ति च ये इसका स्वरूप है और ये दिखाता है कि उनकी भगवान में प्रीति है तो ये 8, 9, 10, 11 तीनों ही शुद्ध भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं बुद्ध भाव समन्विता यस
अतः जो की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है अतः भगवान
क्या अवस्था जिसमें भगवान स्वयं ही उसको हृदय में उसे सारा ज्ञान देते रहते यस
अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दुग्ध दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं।
उन्हें ही का अर्थात अन्य लोगों को कुछ नहीं बोलते चुपचाप बैठे रहते परमात्मा के रूप जो प्रेम पूर्व भक्ति करते हैं प्रेम से भजन करते हैं भगवान उनको ज्ञान देते रहते तुम कैसे मेरे पास आओगे बहुत थोड़ा आज क्लास लंबा हो रहा है थोड़ा सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद कहते हैं जिस व्यक्ति के अल्टीरियर मोटिवेशन रहेंगे अल्टीरियर मोटिवेशन मतलब भक्ति नहीं करना कुछ और करना है वह कृष्ण भावना के सिद्धांतों को फिलोसफी को समझ ही नहीं सकेगा क्यों नहीं समझ सकेगा भगवान ने ऐसे बुद्धि नहीं देंगे तो खुद ही व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अल्टीरियर मोटिवेशन समझते ना ये चाहिए मुझे भक्ति कर रहा हूं हाँ कुछ और चाहिए कुछ गुप्त उपदेश ये चाहिए वो चाहिए तो उसको समझ में नहीं आएगा ईमानदारी से भक्ति करेगा तो भगवान स्वयं ही हृदय में ज्ञान देते यस
इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय
ध्यान में पहुंच सकते हैं इस चीज को एक और समझ लीजिए सार्वभौम भट्टाचार्य कितने बड़े स्कॉलर थे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो उस गृहस्थ होकर के वह सन्यासियों को प्रवचन देते थे वेदांत पे सोचिए उनके बारे में लिखा है कि हरि नाम की महिमा महाप्रभु की कृपा से उनके हृदय में प्रकाशित हुई कहेंगे हाँ हमको हरि नाम की महिमा तो पता है शास्त्र में सारे श्लोक हमको पता है ना श्लोक मालूम होने के बाद भी अटूट गहरी श्रद्धा नाम की महिमा पर भगवान की कृपा से होती है यही बातें बोली जाती है जो प्रीतिपूर्वक भजन करेगा उसे समझ में आ जाएगा भक्त को कि क्या अनुशीलन करने से कैसे भक्ति करने से मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा कृष्णा भगवान कृष्ण स्वयं उसको ज्ञान दे तो प्रीति में बेमानी का कोई ऑप्शन नहीं प्रीति मतलब प्रीति निर्व्यलीक शब्द भागवत में आया बेमानी से रहित भक्ति करना भागवत में बताया गया है जो भक्त भगवान के बारे में सुनने में के लिए बड़ा आतुर रहता बहुत अच्छा लगता है उसके हृदय में भगवान सब सफाई कर देते इसीलिए बहुत सारे लोग सुनते भी हम देखते हैं उतना प्रगति नहीं करते आग्रह नहीं है ऑफिशियल हियरिंग इज नॉट सफिशिएंट हाँ भाई अब टाइम हो गया अच्छा ठीक है ब्रेकफास्ट से पहले एक घंटा बिताना है तो ऐसा दैट इज नॉट ऑफिशियल हियरिंग पढ़ लीजिए चार पेज बाकी है
इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चयवादी सांख्य योग में कुछ भी संबंध
तो
नहीं
स्पष्ट है कि जो भगवान ने सांख्य बताया उसका कोई नास्तिकता से संबंध नहीं हाँ जी
अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्चयवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है
क्लियर है समझाना नहीं है
ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की
और स्वाभाविक है ईश्वर ये तो बोलेगा नहीं कि ईश्वर नहीं है ये सांख्य कौन बोल रहा है कृष्ण भगवान ईश्वर बोल रहे हैं तो वो क्यों बोलेंगे ईश्वर नहीं है कहने का अर्थ है मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं हूं नहीं तो स्वाभाविक से बात है उस समय कपिल जी आए नहीं थे ये नास्तिक कपिल नहीं थे
वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख से भी कोई सरोकार नहीं है।
हाँ, यानी प्रभुपाद जो भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं बस स्पष्ट है, उसमें वह उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं जितना कपिल देव ने बताया था, ये प्रभुपाद ने बता रहा है। यस,
यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन।
आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, कौन से सांख्य का वर्णन हो रहा है, शरीर आत्मा को अलग अलग देखने की का विज्ञान बताया जा रहा है। यस, उतना ही बताया जा रहा है।
भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया।
क्यों किया? आत्मा हो तो शरीर के भोगों से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो, इसलिए अच्छा अभी तुमको आत्मा का सुख प्राप्त नहीं है, तो तुम अब शरीर में रहते हुए शरीर की क्रियाओं को आत्मा की ओर लक्षित करने के लिए निष्काम कर्म योग करो, भक्ति योग करो। क्या आप इस बात को समझ पाए? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हाँ, मुझे रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन नहीं है तो ठीक है, कर्म योग करो, ठीक है।
अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है,
क्योंकि उद्देश्य है भक्ति।
ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो
सांख्य योगा वो पृथक बाला न प्रवदंती न पंडिता। इसकी मैं व्याख्या भी नहीं करना चाहता, आगे आएगी, लेकिन इसका एसेंस ये है, सांख्य योग में व्यक्ति ढूंढता है कि भगवान कौन है, और भक्ति योग में सीधे वे भगवान की सेवा करता है। सांख्य योग में भगवान को ढूंढ करके फिर उनकी शरण में जाता है, तो जब पहले समझ लिया कृष्ण भगवान है उनकी सेवा में चला गया तो कोई अंतर नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। एसेंस ये है, बाकी हम उसको वहां पे व्याख्या करेंगे। यस,
निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख का ही वर्णन हुआ है।
okay.
अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना मृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
इसको थोड़ा समझिए, भक्ति प्रेमा भक्ति भी, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल जप ही करें। आप जप करें, आप भगवान के मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, या और अन्य अन्य भगवान के लिए तुलसी उगा सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, अन्य अन्य सेवाएं, जो कि आधारभूत लक्षण क्या है, प्रेम, भगवान से प्रेम है, इसलिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं भक्त करता है, और उन सभी की एक के बाद एक सेवाओं को करने से वह पूरे दिन भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है। और यह भक्त का स्वयं का, हम सब का स्वयं का दायित्व है कि अपने आप को व्यस्त रखें भगवान की सेवा में, फिर ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी, दिव्य ज्ञान हृदय में प्राप्त होगा। ये बात समझ में आ रही है? मेक श्योर कि हम लोग माया की सेवा नहीं करें नेक्स्ट मोमेंट। यस,
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत कर्म,
ये समझ में आ गया? उसके हृदय का जो अज्ञान है उसको उसके अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा कैसे हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान स्वयं ही स्वयं प्रकट कर देंगे। पढ़िए,
कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है।
एक लाइन, लास्ट लाइन को समझेंगे। बुद्धि योग के द्वारा अपनी स्थिति को भगवान से समझ करके जब हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों में दिव्यता होती है, और वह कार्य हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। ये सामान्य कार्य जो हम परिवार के लिए करते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उनमें ये गुण नहीं होता है। अभी तो उल्टा गुण होता है कि हमारा मोह और अज्ञान बढ़ जाता है। कई बार सुनेंगे अभी आप, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।